आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय जैव विविधता। ये कक्षा आठवीं के विषय विज्ञान का पांचवा अध्याय है। आज हम पहले रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद आज की क्लास में ही बच्चों इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके चैप्टर को यहीं पर आज फिनिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले प्रवासी पक्षियों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि प्रवासी पक्षियों को इंग्लिश में माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि माइग्रेटरी बर्ड्स कहने का मतलब क्या है, ये किस प्रकार की पक्षियां होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी पक्षियां होती हैं जो जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जब उनके उस जगह पर जहाँ वो नॉर्मली नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जब वहाँ पर कुछ ऐसी मौसम हो जाती है या फिर ऐसा वातावरण हो जाता है जिसमें उनका रहना नामुमकिन हो जाता है, तो वो वहाँ से बहुत दूर तक किसी भी देश में उड़ान भर के दूसरे देश में पहुँच जाती हैं और तब तक रहती हैं जब तक उनके वहाँ का वातावरण फिर से ठीक नहीं हो जाता। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण यहाँ पर हमने बात की थी साइबेरियन क्रेन्स की। ये जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, ये भी एक प्रकार की पक्षी होती हैं। ये भी प्रवासी पक्षियों के कैटेगरी में आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती हैं, साइबेरिया में पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है साइबेरियन क्रेन्स, या फिर हिंदी में कुर्जा कहा जाता है। तो ये जो पक्षी होती हैं, जब इनके देश में साइबेरिया में ठंड पड़ने लगती है और उस ठंड में इतना ज़्यादा ख़राब मौसम हो जाता है कि उनका वहाँ रहना ही नामुमकिन हो जाता है, तो वो वहाँ से उड़ान भर के बहुत दूर हमारे देश में आ जाती हैं, हमारे देश के राजस्थान वाले हिस्से में आ जाती हैं और तब तक रहती हैं जब तक इनके देश में यानी कि साइबेरिया में ठंड का मौसम थोड़ा कम नहीं हो जाता और स्थिति इनके रहने लायक वापस से जब तक नहीं हो जाती तब तक ये हमारे देश में रहती हैं। और ये हमारे देश में कहाँ रहती हैं, राजस्थान के कौन कौन से इलाके में रहती हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। और यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हो, चित्र 5.8 पेज नंबर 55 पर आप लोगों को दिखाया गया है कि इन प्रवासी पक्षियों का जो झुंड है वो किस तरीके का दिखता है। तो राजस्थान के किन किन जगहों पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, साइबेरियन क्रेन्स आती हैं। पहला ये आती हैं फलोदी के पास खीचन में, जो जोधपुर में मौजूद है। दूसरा ये आती हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर में। तीसरा ये आती हैं गुड़ा विश्नोई यान के पास काकानी तालाब जोधपुर में, या फिर तालछापार चुरू में, या फिर डिडवाना नागौर में। तो ये सभी के सभी जो जगह हैं राजस्थान में, यहाँ पर आपको ये माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिल सकती हैं ठंड के वक्त में। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यानी कि जैव विविधता उष्ण स्थल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये जो जैव विविधता उष्ण स्थल होते हैं, ये हमारे धरती के भाग में मौजूद कुछ कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता होती है। यहाँ पर जो भी वहाँ पर पशु पक्षी मौजूद होंगे या फिर पेड़ पौधे मौजूद होंगे, उनमें भिन्नता बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा विविधता होती है। इसी के वजह से इन जगहों को जैव विविधता हॉटस्पॉट्स कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये जो जैव विविधता उष्ण स्थल होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता होती है जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की कि कहा जाता है कि अगर इन्हीं उष्ण स्थलों की ही सिर्फ रक्षा कर ली जाए और बाकी के वन और जो फॉरेस्ट वगैरह है उनकी रक्षा ना की जाए, केवल इन हॉटस्पॉट्स की ही रक्षा कर दी जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए, तो हमारे जो विश्व है उसमें से बायोडाइवर्सिटी का जो डिग्रेडेशन है, जो जैव विविधता का क्षरण है, उसको करीब करीब 30% कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इन हॉटस्पॉट्स में, इन उष्ण स्थलों में कितनी ज़्यादा जैव विविधता होती है कि ऐसा माना जाता है कि अगर केवल इन्हीं को संरक्षण दे दिया जाएगा, इन उष्ण स्थलों को ही केवल अगर संरक्षण दे दिया जाएगा, तो क्या होगा कि पूरे विश्व में करीब करीब हम 30% से कम कर सकते हैं जो जैव विविधता का क्षरण हो रहा है उसको। फिर हम लोगों ने बात की थी कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम है नॉर्मन मेयर्स, इन्होंने क्या कहा था इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। इन्होंने कहा था कि अत्यधिक जैव विविधता संपन्न एवं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के आवास स्थल रहे वे जैव भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की महत्वपूर्ण पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियां जैव विविधता मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण नष्ट हो रही हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाती हैं। इसका मतलब सिर्फ आसान भाषा में अगर आप समझो तो इतना ही है कि ये हमारे धरती के भाग के कुछ कुछ हिस्से हैं, कुछ धरती के भाग की जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता होती है। यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता होती है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा जैव विविधता होती है, इतने अलग अलग प्रकार के वहाँ पर जीव जंतु मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं और वो सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी संरक्षण करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इंसानों की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण, हम इंसानों की कुछ कुछ हरकतों के कारण ये जैव विविधता उष्ण स्थल जो है ये बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये नष्ट हो रहे हैं, तो हमें अपनी हरकतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो जैव विविधता उष्ण स्थल है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियाँ जो होती हैं, जो संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं वो भी पाई जाती हैं, लुप्त प्राय की श्रेणी में जो प्रजातियाँ आती हैं वो भी पाई जाती हैं, विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं की जो प्रजातियाँ होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो उष्ण स्थल है यहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे विश्व में करीब करीब 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, यानी कि जैव विविधता उष्ण स्थल हैं, जिनमें से 2 जैव विविधता उष्ण स्थल हमारे देश में भी है। कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी घाट है और दूसरा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। ये दोनों के दोनों जगह क्या कहलाती है? हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहलाती है। साथ ही में हम लोगों ने बात की थी बच्चों की वनोन्मूलन की वजह से, वनों को नष्ट करने की वजह से ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ये जो जैव विविधता उष्ण स्थल है, इनका भी नंबर बहुत जल्दी जल्दी कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें वनोन्मूलन को अब रोक देना चाहिए, वनों की कटाई को रोक देना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा की थी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सूरज से जो रोशनी आती है उससे जो ऊर्जा मिलती है, उससे जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उससे वो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, और उसके बाद वो उस खाने को खुद नहीं खाते, हम खाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि पेड़ पौधों की वजह से ही हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, और इसीलिए हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे कि दुर्गा सप्तशती, उसमें एक श्लोक लिखा गया है जिसका अर्थ ये है कि हमारी पृथ्वी पर जब तक वन रहेंगे, वनों से भरे हुए वृक्ष रहेंगे, पहाड़ रहेंगे और पहाड़ों में भी वृक्ष रहेंगे, जंगल रहेंगे, तब तक हम लोगों की जो इंसानों की संतान है उनका पालन पोषण बहुत आसानी से होता रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम इंसानों को, हमें खुद खाना बनाना पड़ता है और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे हम खाना बनाते हैं, या तो हमें फल सब्जी चाहिए होती है या फिर हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। तो अगर फल सब्जी हमें चाहिए तो वो हमें पेड़ों से ही तो चाहिए, वृक्षों से ही तो चाहिए। तो इसीलिए जब तक वृक्ष रहेंगे धरती पर तब तक ही केवल हम इंसानों का रहना मुमकिन है, अदरवाइज हम लोग इंसान जो हैं हम लोग खुद से, हम लोग पेड़ों की तरह वृक्षों की तरह हम खाना नहीं बना सकते ना, हम उनकी मदद से खाना बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें पेड़ का, वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। तो पेड़ों का संरक्षण करने के लिए, वृक्ष का संरक्षण करने के लिए आप लोग आपकी उम्र में सबसे आसान काम एक तो ये कर सकते हो कि आप वृक्षारोपण कर सकते हो, वृक्ष लगा सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप कागज़ को कम से कम वेस्ट करके, जितना कम आप वेस्ट करोगे कागज़ को उतने ही कम पेड़ कटेंगे और उतने ही ज़्यादा आप पेड़ की रक्षा करने में मदद करोगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कागज़ होता है वो वृक्ष से बनता है, पेड़ों को काट करके बनता है, और करीब करीब 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 बड़े वृक्षों को काटा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि जितने ज़्यादा आप कागज़ वेस्ट करोगे उतने ज़्यादा ही वृक्षों की कटाई होगी। तो इसीलिए आप लोगों को कागज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रफ वर्क बचा के कागज़ों में कर लोगे, वेस्ट नहीं करोगे कागज़ों को, उतना ही अच्छा होगा। और साथ ही में आप कागज़ का पुनः चक्रण भी कर सकते हो, मतलब कि कागज़ को रीयूज़ भी कर सकते हो, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और रूप में इस्तेमाल कर सकते हो कागज़ को, और इसकी वजह से आप जो हमारे वृक्ष हैं उनको संरक्षण देने में मदद करोगे, साथ ही में जो ऊर्जा खर्च होती है उस कागज को बनाने के लिए पैसा जो लगता है उसको बचाने में भी आप बहुत आसानी से अपना सहयोग दे सकोगे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी बच्चों रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, इसके बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ये एक पुस्तक है जो पूरे विश्व के स्तर पर इसे मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है, और इसमें पौधों के और जो जीव जंतु हैं, पक्षियाँ हैं, चाहे कोई जानवर है या फिर कोई और स्पीशीज है जीवों की, उनके नाम उसमें लिखे जाते हैं। नाम क्यों लिखे जाते हैं? नाम केवल तब लिखे जाते हैं जब वो पौधे या फिर जीव जंतुओं की वो स्पीशीज, वो प्रजाति, जब वो संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी में आ जाती है तब उनका नाम रेड डाटा पुस्तक में लिख दिया जाता है, ताकि पूरे विश्व के अलग अलग देशों को पता चल जाए कि उनको इन जीवों की सुरक्षा करने की ज़रूरत है, इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो रेड डाटा पुस्तक होता है इसे अलग अलग देश भी अपने स्तर पर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व के स्तर पर एक रेड डाटा पुस्तक मेंटेन की जाती है, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने कुछ प्रजातियाँ पढ़ी थी, राजस्थान में पाई जाने वाले गायों की प्रजातियाँ, जिसमें से पहली प्रजाति हमने पढ़ी थी कांकरेज प्रजाति के बारे में। तो हमने बात की थी कि ये जो कांकरेज प्रजाति की गाय होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में, पाली में, जालौर जिले के सांचौर में और नागेड़ क्षेत्र में, नैगढ़ क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ये राजस्थान की अलग अलग जगह है जहाँ पर ये कांकरेज प्रजाति की गाय पाई जाती है, और ये औसतन नॉर्मली ये थोड़ी लंबी होती है, लंबे दर्जे की होती है, और साथ में इनका जो शरीर होता है वो शक्तिशाली होता है, चौड़ा सीना होता है, सीधी कमर होती है, चौड़ा और बीच में धंसा हुआ ललाट होता है, मजबूत लंबे और मुड़े हुए सींग होते हैं, लंबे चौड़े लटकते हुए कान होते हैं, उठा हुआ धुआं होता है, काले झंवर की अपेक्षाकृत छोटी पूंछ होती है इनकी, और यही सब बातें जो हैं इस वंश की प्रमुख पहचान हैं। और ये जो इस प्रजाति की जो गाय होती है ये तेज़ चलती है और मजबूत होने के कारण ये बोझा भी ढो सकती है, और इसीलिए इतनी सारे गुण होने के कारण ये इस प्रजाति की जो गाय होती है ये किसानों की बहुत पसंदीदा गाय होती है। उसके बाद अगली प्रजाति की हमने बात की थी, जो प्रजाति का नाम है मालवी प्रजाति, और ये प्रजाति की गाय कहाँ कहाँ मिलती है, ये झालावाड़ के मालवी प्रदेश में पाई जाती है, और इस प्रजाति की गाय को भारवाहक पशु के रूप में इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया जाता है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है। भारवाहक मतलब कि ये भी बोझा ढो सकती है, मजबूत होती है। और मालवी प्रजाति की जो गाय होती है इनका शरीर गठीला होता है और रंग घूसर होता है, और जैसे जैसे इस प्रजाति की जो गाय होती है उसमें से नर वाला जो पशु है उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके शरीर का रंग जो है वो गहरा घूसर होता जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि इस प्रजाति की दो प्रकार की और जातियाँ होती हैं, मतलब कि जो ये मालवी प्रजाति है ये दो प्रकार की होती है, एक छोटी मालवी होती है, एक बड़ी मालवी होती है। जो बड़ी मालवी होती है वो झालावाड़ में पाई जाती है, और जो छोटी मालवी होती है वो कोटा में और उदयपुर में ज़्यादा मिलती है। इस प्रजाति की जो गाय होती है इनका शरीर गठीला होता है, कमर सीधी होती है, ढालू पुट्ठे मजबूत एवं छोटी टांगे होती हैं, चौड़ा सीना होता है, विकसित धुआं होता है, लटका हुआ मुतान होता है, धंसा हुआ ललाट होता है, मस्तक के बाहरी हिस्सों से निकलकर आगे की ओर निकले नोक वाले दो सींग होते हैं, इनके कान छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, और एड़ी तक पहुंचने वाले इनके काले झंवर की मध्यम लंबाई की पूंछ होती है, और यही सब इनकी मुख्य पहचान के रूप में आपको पढ़ना है, समझना है। यहाँ तक हमने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके बाद दो प्रजातियाँ रह गई थी जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो अगली प्रजाति का नाम है राठी प्रजाति, ये भी राजस्थान में पाई जाती है, और इस नस्ल की जो गायें होती हैं ये दूध देने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं, और ऐसा कहते हैं कि जो राठी प्रजाति की गाय होती है ये मिक्सचर होती है अलग अलग प्रकार की गायों का, साहिवाल की गाय का, लाल सिंघी का, और हरियाणा नस्ल की एक गाय होती है, हरियाणा की नस्ल की एक गाय होती है, इन सभी का ये मिश्रण कहलाती है राठी की गाय। और राठी की जो गाय होती है ये बादामी रंग की होती है, बादाम जिस कलर का होता है उस कलर की होती है, या फिर ये चितकबरी होती है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग पैच हो सकते हैं इसके स्किन के ऊपर, अलग अलग कलर्स के पैच हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि इस नस्ल की जो गाय होती है इनको भारत की सर्वश्रेष्ठ गायों में जोड़ा जाता है, मतलब कि जो भारत की अलग अलग बहुत अच्छी महत्वपूर्ण गायें होती होंगी उनमें से राठी को भी गिना जाता है। और राठी की जो गाय होती है ये करीब करीब 25 से 30 पौंड एक बार में ये दूध देती हैं। और राठी की गायों की जो पूंछ होती है वो लंबी होती है और पेट इनका बड़ा होता है। और इस नस्ल की जो बैल होते हैं वो ढीले होते हैं और वजनदार होते हैं। तो ये तो बात हो गई राठी की। अब हम बात कर लेते हैं अगली प्रजाति की, जिसका नाम है नागौरी। ये जो नागौरी प्रजाति की गाय होती है ये इनके बैल जो होते हैं वो बहुत चुस्त होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें, बहुत फुर्ती से काम करते हैं। और फुर्तीले होने की वजह से ही इनको हल जोतने में इनकी ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इसी कार्य के लिए, हल जोतने के कार्य के लिए इस प्रजाति के बैल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले ये जो नागौरी प्रजाति की गाय थी सबसे पहले कहाँ पर पाई जाती थी, ये पाई जाती थी नागौर जिले, जो है नागौर जिला राजस्थान में जो जिला है उसका सोहालक प्रदेश जो है, सबसे पहले वहाँ पर नागौरी वंश की गाय पाई जाती थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया नागौरी, क्योंकि ये नागौर जिले में सबसे पहले पाई जाती थी इसलिए। और इस प्रजाति की जो गाय होती हैं वो मजबूत होती हैं, रिष्ट पुष्ट होती हैं, मतलब कि बड़ी ताकतवर होती हैं। इनका लंबा शरीर होता है, मजबूत गर्दन होती है और औसत दर्जे के इनके सींग होती हैं, समतल ललाट होती है, लंबे कान होते हैं, पतले पैर होते हैं, पुष्ट थुआ और छोटी पूंछ जिसके सिरे पर टखने के नीचे तक पहुंचने वाला झवर होता है। और यही सब बातें इस नस्ल की जो गाय होती हैं चाहे बैल होती हैं, इस नस्ल की विशेष बातें जो हैं यही सब बातें आपको समझनी हैं। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में थारपारकर और गिर नस्ल की गायें भी पाई जाती हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ में आपका अध्याय खत्म हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला प्रश्न जो है उसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न है, वो प्रजाति जो प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती परंतु संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो प्रजाति जो प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती लेकिन संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है वो कहलाती है प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजाति, जो कि स ऑप्शन है। तो आपको स ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि जो अलग अलग नाम दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा है कि निम्न में से संकटापन्न प्रजाति कौन सी है। तो इसमें नाम दिए गए हैं नीम, खेजड़ी, इंद्रोक और बेर। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो इंद्रोक का पेड़ होता है वो किस में आता है, वो संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में आता है, तो इसीलिए आप लोग इंद्रोक को टिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें से पहला प्रश्न है, सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड कहाँ पर मेंटेन किया जाता है। तो आप लोगों ने अभी अभी रिवाइज किया जो उसमें आपको मैंने बताया था कि रेड डाटा पुस्तक नाम की जो पुस्तक होती है उसी में संकटापन्न स्पीशीज जितनी भी होती हैं, या पेड़ पौधों की होंगी, चाहे जीव जंतुओं की होंगी, चाहे किसी और भी स्पीशीज के नाम जो होते हैं, अगर वो संकटापन्न की श्रेणी में आ रहे हैं तो उनके नाम लिखे जाते हैं रेड डाटा पुस्तक में। और ये पुस्तक मेंटेन की जाती है IUCN के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है ये किस श्रेणी में आते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे जीव जंतु हैं चाहे पेड़ पौधे हैं और इनका कोई भी प्रतिनिधि जिंदा नहीं है आज की डेट में, तो कहेंगे कि वो विलुप्त श्रेणी में आते हैं, विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ऐसे पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जो हैं किसी विशेष क्षेत्र में अगर वो पाए जाते हैं तो उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं, और इसी श्रेणी में इनके नाम लिखे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर विशेष क्षेत्रीय प्रजाति लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें आपको जो वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं, साथ में जो आपको नंबर दिए गए हैं कि इतने जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे इतने नेशनल पार्क हैं, चाहे इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए। ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए और उसी आधार पे आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आपको एग्जाम में भी पूछेंगे तो आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, इसीलिए आप इस चैप्टर को ज़्यादा याद करने पे फोकस करना। उसके बाद अगला प्रश्न है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद इसमें पहला प्रश्न है, पौधों और वन्य जीवों के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित स्थान कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं अलग अलग जो स्थान होते हैं जहाँ पर पौधों को और जो जीव हैं, अलग अलग जो जीव हैं जिनको सुरक्षित रखा जाता है, उनके नाम आपने पढ़े हुए हैं। जैसे कि अभयारण्य होते हैं, जीव अभयारण्य होते हैं, या फिर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, या फिर चिड़ियाघर होते हैं, या फिर वनस्पति उद्यान है। और इन जगहों पर जो वनस्पति उद्यान है वहां पर पौधों को रखा जाता है, बाकी सभी जो जगह है वहां पर क्या रखे जाते हैं, वहां पर जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों रखे जा सकते हैं, लेकिन वनस्पति उद्यान में केवल और केवल पेड़ पौधों की प्रजातियों को रखा जाता है। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं यहाँ पर जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों को रखा जाता है, पक्षियों को या फिर किसी और जानवर को या फिर किसी पौधे को, इनको संरक्षित रूप से रखा जाता है। और यहाँ पर इंसानों की मनाही होती है, वहाँ पर किसी भी चीज़ को टच करने के लिए उनको मना होता है, वहाँ पर वो पेड़ पौधों को नहीं तोड़ सकते हैं, लकड़ी वहाँ की यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर वो जीव जंतुओं का वहाँ पर शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो यहाँ पर वर्जित होती हैं। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, और यहाँ पर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है, एक प्राकृतिक आवास देने की कोशिश की जाती है। इसीलिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को स्वस्थान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को रखा जाता है तो उन्हें उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। इसीलिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को स्वस्थान भी कहते हैं। जब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, पेज नंबर 54 पर आप लोग आ जाओ। यहाँ पर आप देखो एक चार्ट दिया हुआ है, एक चार्ट में आपको बताया गया है किस तरीके से बना करके कि जैव विविधता संरक्षण की क्या क्या विधियां हैं, और यहाँ पर आपको दो, उसको चार्ट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, स्वस्थान और बहिस्थान। उसके बाद आपको स्वस्थान में वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र ऐसे करके लिखा हुआ है, और बहिस्थान में प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करो, जब इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे तो आप इस चार्ट को डायरेक्टली बना सकते हो, क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में भी पूछेंगे, तो अगर आप इस चार्ट को एकदम बना दोगे, बिल्कुल एज इट इज़ बना दोगे, जैसा ये चार्ट है वैसा ही बना दोगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर नाम पूछे गए हैं और ये नाम यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ठीक से समझ में आने लायक एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग यही चार्ट डायरेक्टली बना सकते हो आंसर के रूप में। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, मतलब कि आपको ज़्यादा बहुत डिटेल में आंसर नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही आंसर लिखना है। तो आपको यहाँ पर नाम ही केवल पूछे गए हैं कि कौन कौन से सुरक्षित स्थान हैं और उन स्थानों को क्या कहते हैं, यही आपको लिखना है। तो आप लोग ये चार्ट ही डायरेक्टली वहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेड डाटा पुस्तक क्या होती है। तो हम लोगों ने अभी अभी बात की थी कि रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसको मेंटेन किया जाता है विश्व के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर इसे मेंटेन किया जाता है, और इसमें नाम लिखे जाते हैं उन जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की जो संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी में आ चुके हैं, तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और सभी देशों को, जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड में, सभी को पता चल जाना चाहिए कि इस प्रजाति के जो जीव हैं उनको सुरक्षा मिलने की ज़रूरत है, उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए रेड डाटा पुस्तक में इनके नाम लिख लिए जाते हैं तब जब ये संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी में आ जाते हैं। और अलग अलग देश भी अपना रेड डाटा पुस्तक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड के लेवल पर एक रेड डाटा पुस्तक मेंटेन की जाती है IUCN के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट्स होते हैं ये ऐसी जगह होती हैं, हमारे धरती के कुछ ऐसे भाग होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विविध प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब कि वहाँ पर जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत संपन्न होती है, और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि इन हॉटस्पॉट्स को, मतलब कि इन जैव विविधता हॉटस्पॉट्स को ही अगर केवल संरक्षण दे दिया जाएगा और बाकी के वनों को उतना ज़्यादा मान लो संरक्षण ना भी दिया जाए, केवल इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को ही संरक्षण दिया जाए, तो हम अपने विश्व में से करीब करीब 30% से बायोडाइवर्सिटी का डिग्रेडेशन, यानी कि जैव विविधता के शरण को 30% से हम कम कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो पूरे वर्ल्ड में कितनी जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, ये हैं 34। और इन 34 हॉटस्पॉट्स में से 2 हॉटस्पॉट्स हमारे देश में भी हैं, और वो कौन कौन सी हैं? वो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, ये दोनों की दोनों जगह क्या कहलाती हैं? ये हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहलाती हैं, मतलब जैव विविधता उष्ण स्थल कहलाती हैं। तो इतना आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति उद्यानों की स्थापना क्यों की गई? तो आप लोगों को पता है वनस्पति उद्यान क्या होते हैं। वनस्पति उद्यान वो जगह है जहां पर पेड़ पौधों की प्रजातियों को रखा जाता है, और वनस्पति उद्यानों की स्थापना, इनको बनाया क्यों गया? इनको बनाया गया ताकि यहाँ पर पेड़ पौधों की वो प्रजातियाँ जो संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में आ गई हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षा दी जाए, संरक्षण दिया जाए। साथ ही में इन जगहों पर, मतलब कि वनस्पति उद्यानों में, जिनको इंग्लिश में बोटानिकल गार्डन्स कहते हैं, इन जगहों पर बीज बैंक स्थापित किए जाते हैं, और यहाँ पर वनस्पतियों के, मतलब कि पेड़ पौधों के वो प्रजाति जो संकटापन्न या फिर लुप्त प्राय की श्रेणी में आ गए हैं, उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से वनस्पति उद्यानों को बनाया गया था। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि बीज बैंक क्या होते हैं। बीज बैंक वो जगह होती है जो बोटानिकल गार्डन्स में ही बनाए जाते हैं, और यहाँ पर बीजों को, जो पेड़ पौधे के बीज होते हैं, उनको सुरक्षित रूप से रखा जाता है। और बोटानिकल गार्डन्स में नॉर्मल लोगों को मना होता है कि वो, मतलब पेड़ पौधे काटने के लिए मना होता है, चाहे लकड़ियों का वहाँ से इस्तेमाल करना मना होता है। वहाँ पर केवल आप रिसर्च करने जा सकते हो। अगर आपको कुछ पढ़ने के लिए जाना है, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए जाना है, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हो। पूरे विश्व में लगभग 1600 वनस्पति उद्यान हैं, और हमारे देश में भी वनस्पति उद्यान हैं अलग अलग प्रकार के। एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इस अध्याय में दिया गया है, जिसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। ये सिपुर हावड़ा पश्चिम बंगाल में मौजूद है, और करीब करीब 269 एकड़ में ये फैला हुआ है। उसके बाद अगले प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, मतलब कि इसमें आपको लंबा चौड़ा आंसर लिखना है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के कारण एवं दुष्परिणाम क्या हैं, उस पर आपको लेख लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, लेख आप लोग खुद लिख लेंगे। देखो, वनोन्मूलन अलग अलग कारणों की वजह से किया जा रहा है। पहला कारण तो ये है कि जो वन होते हैं, वहाँ से हमें ईंधन मिलता है, फर्नीचर मिलता है, निर्माण कार्यों के लिए लकड़ियाँ मिलती है, कागज़ बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, और साथ में सजावटी चीज़ें बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती है। जहाज़ बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, वो भी वनों से प्राप्त की जाती है। और इतनी ज़्यादा लकड़ी अगर हमें कहीं से प्राप्त करनी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा कटने पड़ते हैं, और इसी के वजह से, इतने ज़्यादा पेड़ की कटाई की वजह से, वृक्षों की कटाई की वजह से वनोन्मूलन हो रहा है। उसके बाद दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जो वनों के आसपास लोग होते हैं, वो अपने पशुओं को वनों में चराई करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो अति चराई की वजह से भी, वनों की अति चराई की वजह से भी वनोन्मूलन हो रहा है। तीसरा कारण ये है कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पूरे विश्व की भी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए उनको फूड चाहिए, खाना चाहिए, और खाना बनाने के लिए उसको उगाना पड़ता है, तो उगाने के लिए भी ज़मीन चाहिए। तो क्या किया जाता है, या तो रहने के लिए, आवास बनाने के लिए भी वनों की कटाई कर दी जाती है, वृक्ष काट दिए जाते हैं, और फॉरेस्ट को, यानी कि वनों को क्लियर कर दिया जाता है, ज़मीन खाली कर दी जाती है, वहाँ पर बिल्डिंग बना दी जाती है, या फिर वहाँ पर फैक्ट्री बना दी जाती है, या फिर उस जगह पर जो क्लियर की गई ज़मीन है, खाली की गई जो ज़मीन है, वहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है। और इन सभी कारणों की वजह से वनों की कटाई हो रही है, और ये सब कारण जो है वनोन्मूलन के मुख्य कारण हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या दुष्प्रभाव हैं वनोन्मूलन के, तो पहला दुष्प्रभाव तो ये है कि आप लोगों को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। साथ ही में ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे लिए ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और ऑक्सीजन को हम लोगों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो क्या होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे वातावरण में बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो ये होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है ये एक परत बना देती है हमारे धरती के चारों ओर, और जैसे ही इस परत के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेती है, उसे पकड़ लेती है, और उसके बाद वो जो सूरज की रोशनी है वो वापस से सूरज की ओर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये ट्रैप हो जाती है और ये धरती को गर्म कर देती है और धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से विश्व उष्ण की समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही में आप लोगों को पता होता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी को बांधने के काम आती है, मिट्टी को इकट्ठा करने के काम आती हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, मिट्टी की जो ये बंधने की क्षमता है ये कम हो जाती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में अगर ये मिट्टी बंध कर नहीं रह पाती तो ये चट्टानों को खिसका देने की समस्या पैदा करने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा त्रासदी हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि चट्टान खिसक रहे हैं, खिसक जाते हैं, और ये क्यों खिसक जाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है उसकी बंधने की क्षमता, इकट्ठा रहने की क्षमता कम हो रही है वृक्ष की कमी की वजह से। और हम आगे बात करें तो आप लोगों को पता है कि जो ज़मीन होती है, मिट्टी जो होती है उसके ऊपर आप लोग खाद डालते हो, उर्वरक डालते हो और भी पोषक तत्व डालते हो, वो आप लोग मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर डालते हो, तो जैसे ही अगर मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर आपने ये सभी चीज़ें डाल दी लेकिन वहाँ पर कोई पेड़ मौजूद नहीं है तो उसको बांध कर कोई रख नहीं पाएगा, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो इन सभी चीज़ों को बांध करके रखती हैं, और अगर पेड़ की जड़ें मौजूद नहीं हैं, पेड़ ही मौजूद नहीं हैं, तो मिट्टी की ये जो ऊपर की लेयर है तेज़ हवा के कारण ये उड़ जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को पता चल गया कि पेड़ की कमी के वजह से, पेड़ में कमी क्यों आती है, वनोन्मूलन करने की वजह से आती है, और वृक्षों की कमी के वजह से ये जो अलग अलग नुकसान होते हैं ये आप लोग लिख सकते हो वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव के रूप में। और भी अगर आपको लिखना है वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव के बारे में तो आप लोग पेज नंबर 53 पर आप लोग आइडिया ले सकते हो, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव करके, यहाँ पर शीर्षक दिया गया है और उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो इन पॉइंट्स में से भी आप लोग कुछ आइडियाज ले सकते हो और अपना लेख इसमें से देख कर भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके ऊपर आपको विस्तार से लिखना है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी वही लिखना है कि कौन कौन से संरक्षण के क्षेत्र बनाए गए हैं हमारे केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि जो राज्य सरकार होती है चाहे जो केंद्र सरकार होती है, दोनों के दोनों सरकारें कुछ नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, और साथ में ये कुछ ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर जैव विविधता को संरक्षण दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, चिड़ियाघर बनाए जाते हैं, वनस्पति उद्यान बनाए जाते हैं, और संरक्षित वन क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं, न केवल हमारे देश में अलग अलग देशों में भी ऐसा ही किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को विस्तार से लिखने के लिए कहा गया है, इसका मतलब कि आप लोगों को हर एक जो पॉइंट्स है, मतलब कि वन्य जीव अभयारण्य पहले आपको लिखना है, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है, राष्ट्रीय उद्यान लिखना है फिर एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा चिड़ियाघर के बारे में भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और वनस्पति उद्यान के बारे में भी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, पहले आप लिख देना वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। तो ये जो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जंतुओं की, पक्षियों की और पौधों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों को, विशेष प्रजातियों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, उन्हीं के प्राकृतिक आवास में इनको संरक्षण दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, और वहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य बना करके और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करके ऐसा किया जाता है। हमारे देश में करीब करीब 510 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं, 102 से एक अधिक मतलब कि 103 है टोटल हमारे देश में, लेकिन आपके पुस्तक में 102 लिखा गया है तो आप लोग भी 102 ही लिखोगे, 102 राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर इन जगहों पर राष्ट्रीय उद्यानों में या फिर वन्य जीव अभयारण्य में पेड़ों को काटना मना होता है, वृक्षों की कटाई मना होती है, साथ में जीव जंतुओं का शिकार भी मना होता है। कुछ वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के आप लोग उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कि आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, और आपके यहाँ जो अलग अलग वन्य जीव अभयारण्य होंगे उनके नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर रणथंबोर बाघ अभयारण्य राजस्थान में जो पाया जाता है उसका नाम लिखा गया है, तो आप लोग ये लिख सकते हो। उसके बाद अगला शीर्षक देना आप लोग क्या, चिड़ियाघर या फिर प्राणी उद्यान या फिर जू, इंग्लिश में तो जू लिखते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिख देना कि ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पक्षियों को और पशुओं को और पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, और आम नागरिक यहाँ पर इसको देखने आ सकते हैं, जानकारी लेने आ सकते हैं, और इनकी स्थापना मुख्य उद्देश्य इस ये होता है कि इसलिए इनकी स्थापना की जाती है कि यहाँ पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके मन में लगाव पैदा किया जाता है जीव जंतुओं के लिए। और ये जो चिड़ियाघर है, यहाँ पर जो जीव जंतु रखे जाते हैं या फिर पक्षियाँ जो रखे जाती हैं उनको कैद में रखा जाता है, यहाँ पर इनको फ्री नहीं छोड़ा जाता है, इनको कैद में रखते हैं और इनको विशेष संरक्षण दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको सुरक्षा दी जाती है। इसीलिए कई बारी जू में यानी कि चिड़ियाघर में कुछ ऐसे जीव जंतु भी देखने को मिल सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये आप लोग लिख देना चिड़ियाघर के बारे में। उसके बाद वनस्पति उद्यान आप लोग नया शीर्षक देना और उसके बारे में लिख देना कि जो वनस्पति उद्यान होते हैं यहाँ पर केवल और केवल पौधों की प्रजातियों को रखा जाता है, पौधों की वो प्रजातियाँ जो लुप्त प्राय या फिर संकटापन्न की श्रेणी में आ चुकी हैं उनको रखा जाता है बोटानिकल गार्डन्स यानी कि वनस्पति उद्यान में। पूरे विश्व में करीब करीब 1600 वनस्पति उद्यान हैं और इन वनस्पति उद्यानों में बीज बैंक रखा जाता है, बनाया जाता है, और वनस्पति की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको भी संरक्षण दी जाती है, मतलब कि पेड़ पौधों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको संरक्षण दी जाती है। बीज बैंक क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको लिखना नहीं है उसके बारे में। बीज बैंक में बीजों को सुरक्षित रखा जाता है, पेड़ पौधों की जो अलग अलग बीज होते हैं उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, उन जगहों पर जहाँ पर बीज को सुरक्षित रखा जाता है उसे बीज बैंक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक उदाहरण लिख देना वनस्पति उद्यान का, जो कि है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान सिपुर हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है इस क्वेश्चन का आंसर, और इसी के साथ में आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर खुद से एक बार करने की कोशिश करनी है, पूरे के पूरे चैप्टर को खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करनी है और रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये चैप्टर आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे और आपको ये चैप्टर याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको याद होने के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वो आपको याद होने चाहिए, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ठीक से, चैप्टर पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो भी बताया गया है इस चैप्टर में वो आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप लोग आंसर लिख पाओगे। और आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग अपने टीचर से ज़रूर पूछ लेना। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।